मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 13 फरवरी 2019 है और आज के इस afis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर एक कहावत सुनी होगी और वो है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये एक कहावत है। दूसरी कहावत ये भी है इसी के पैरेलल लेकिन इसके बिल्कुल विरोध में कि यदि जंगल में कोई सुगंधित फूल खिलेगा तो उसके सुगंध को बिखरने से कोई भी नहीं रोक सकता, यानी कि आसपास से गुजरने वाले लोगों को पता चल जाएगा कि इस जंगल में, इस बियावान घनघोर जंगल में कोई सुगंधित फूल खिला हुआ है। ये दो तरह के उदाहरण हैं, दो तरह की कहावतें हैं जो लगातार हम लोगों के दिमाग में बचपन से ही भरी जाती हैं और फिर बाद में समझ में नहीं आता कि इनमें से सही कौन सा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। विरोध में कैसे हैं? एक कह रहा है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि अगर जंगल में एक मोर नाच रहा है तो नाचता रहे, किसको पता चल रहा है, किसको क्या लेना देना है, वो अपनी खुशी के लिए नाच रहा है, नाचे, यानी कि दूसरों को इसका कोई अनुमान नहीं होगा, कोई पता नहीं लगेगा, दूसरे इसका आनंद भी नहीं ले सकेंगे, जान नहीं सकेंगे, बात खत्म हो गई, वो उसी तक सीमित रह करके खत्म हो जाएगी चीजें, चाहे वह उसके नृत्य की कला हो, उसका सौंदर्य हो, उसके आनंद से उठने वाली सकारात्मक किरणें हो, उसी तक सीमित रहेंगी और खत्म हो जाएंगी। अब ये सही है या फिर हम इस बात को मान करके चले कि नहीं कोई बात नहीं, जंगल है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा बात ठीक है, लेकिन अगर मैं फूल हूं और मुझ में सुगंधित है, सुगंध है यानी कि मैं सुगंधित पुष्प हूं, मुझ में गुण है, मुझ में क्षमताएं हैं, तो मुझे बिखरने से, बिखरने का मतलब यहां टूटकर बिखरने से नहीं है, मुझे फैलने से कोई भी नहीं रोक सकता, यानी कि मेरे बारे में लोगों को पता चल ही जाएगा, राइट। अब आप देखिए कि इन दोनों में कितना विरोधाभास है। एक कह रहा है कि आप नाचते रहिए, आप बहुत गुणवान है, देखिए नाचने का मतलब यहां गुणवान होने से कि आपके पास नृत्य की कला है, बहुत अच्छा आप नृत्य कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप दूसरों को जाके बताएंगे नहीं, दूसरों के सामने जाकर अपने नृत्य कला का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप इतने अच्छे नर्तक हैं, आप इतनी अच्छी नृत्यांगना है, और जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा वो आपको आमंत्रित कैसे करेंगे, फिर आपकी कला दुनिया में फैलेगी कैसे, यानी कि आपको अपने बारे में जाकर बताना ही चाहिए, उसका प्रदर्शन करना चाहिए कि देखिए मैं ये हूं, तभी जाकर बात बनेगी। लेकिन दूसरा जो उदाहरण है वो कहता है कि नहीं कोई जरूरत ही नहीं है, अगर आप में गुण है तो बटने चढ़ने के लोग खुद आएंगे, खींचे चले आएंगे और उसको मान्यता देंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि हमारे यहां की ये जो दो परस्पर विपरीत उदाहरण है, कहीं ना कहीं जब अगर बचपन में हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि अभी हम इन दोनों में से किसको सही माने। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि न केवल मैं ही इस भ्रम का शिकार रहा हूं, बल्कि जब मेरी दूसरों से बातें होती हैं तो मुझे महसूस होता है कि नहीं, मेरे जैसे ये भी इसी तरह के भ्रम के शिकार रहे हैं। कभी इनको लगता था कि नहीं मुझे सामने आकर के अपनी अपने बारे में बताना चाहिए, अपना परिचय देना चाहिए, कभी लगता था कि नहीं नहीं यार चलो उनको खुद ही पता लग जाएगा। मित्रों यहां मैं एक सच पूछे तो इसी समस्या पर अभी के अपने एक अनुभव को आधार बनाकर आपसे बातें करने जा रहा हूं। देखिए दर्शन हुआ क्या कि अभी परसों मेरे से एक साल सीनियर थे मिस्टर फ्रैंक नरोना, उनकी बेटी की शादी थी बेंगलुरु में। जब शादी में जाने की बात हुई तो मेरे मन में दुविधा थी कि जाऊं या न जाऊं, लेकिन फिर जब बेटे ने कहा, पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं आपके इतने अच्छे फ्रेंड रहे हैं और आपको चले जाना चाहिए, आप लोग इतने क्लोज थे, चलिए फ्रेंड होना तो अलग बात, हम लोग बिल्कुल फैमिली के लेवल पर भी बहुत क्लोज रहे हैं, तो नहीं नहीं आपको जाना चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है चलिए, हमने टिकट बुक करा ली। तो पहले मुझे भोपाल से हैदराबाद जाना था और फिर हैदराबाद से फ्लाइट बदल करके बेंगलोर पहुंचना था और वापसी में बेंगलोर से मुझे अहमदाबाद आना था और अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़ के भोपाल लौटना था। इसी बीच में हुआ ये कि जो बेंगलोर से अहमदाबाद वाली जो फ्लाइट थी वो उसका शेड्यूल कैंसिल हो गया अब मेरे पास सूचना आ गई कि ये फ्लाइट आपकी कैंसिल हो गई है, आप दूसरी बुक करा लीजिए। इवन जानबूझ करके आपसे ये बातें कह रहा हूं कि तभी आप चीजों को सही मायने में समझ सकेंगे। अब देखिए कि हुआ क्या कि सामान्यतया जब आप एडवांस में और सस्ती टिकटें लेते हैं फ्लाइट की तो वो वापस नहीं होती। अगर आप कैंसिल कराएंगे तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं उसमें से। तो बीच बीच में मेरा मन भी डोलता था कि यार बेकारी के करा लिए, जाने से क्या होगा, अब ठीक है लोग तो बुलाते ही रहते हैं, तो मन तो भटकता रहता था, मतलब द्वंद में फंसा रहता था। लेकिन जब ये आया कि नहीं अब बेंगलोर से जो अहमदाबाद की फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है, तो इसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो अब आप अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी टिकटें एक ही कंपनी से थी। तो आप चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं अपना पूरा टूर और आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। यानी कि फिर से मुझे एक मौका मिल गया कि यार मैं चाहूं तो इसे टाल सकता हूं। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे समय नजदीक आते चला जाता है हमारे जाने के, वैसे वैसे हमारा मन कमजोर पड़ने लगता है। बेवजह हम अपने दिमाग पर एक बोझ सा महसूस करने लगते हैं, और वो बोझ हो सच पूछे तो कुछ नहीं, दो चीजें परेशान करती हैं। एक चीज तो ये है कि हम अपने रूटीन के जो अभ्यस्त हो गए हैं, लगता है यार कि हमारे ये रूटीन बेकार के डिस्टर्ब हो जाएगा, और दूसरा जहां आप जा रहे हैं उनको लेकर के बेवजह आप परेशान है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, कहां रुकेंगे, मन दुनिया भर की फालतू की चीजें, एकदम फालतू की चीजें। फिर जब बेटे ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि यार चलो अच्छा मौका है, तुम टिकटें कैंसिल करा दो। फिर बेटे ने कहा कि पापा ये रोज रोज नहीं होता है, आप चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है, दो तीन दिन की बात है। तो फिर मुझे जोश आ गया, मैं कहा कि यार ठीक है चलो उसको उसके रूट को चेंज कर दो। तो उन्होंने ऑफर दिया था कि अब आप चाहें तो बेंगलुरु से हैदराबाद आ जाए और हैदराबाद से भोपाल आ जाए, लेकिन हैदराबाद में बहुत लंबा स्टे था, 10 घंटे की वेटिंग थी भोपाल की फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो एक आधार था कि यार 10 घंटे अब हैदराबाद एयरपोर्ट पर कौन पढ़ा रहेगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं चलिए कोई बात नहीं, वहां आराम से लाउंज में बैठेंगे अपना पढ़ने लिखने का काम करेंगे। तो दोस्तों में फिर चला गया, अंततः मैं चला गया। अब आप देखिए कैसे हमारा मन कमजोर पड़ता है, ये मैंने इस पहले पक्ष को रखा है। मैंने शुरू में बताया कि बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं हम लोग, राइट। और जब मैंने उनको सूचना दी कि मैं आ रहा हूं तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने व्हाट्सएप भी किया कि इट्स ग्रेट, मतलब वी कांट एक्सपेक्ट, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई इतनी दूर से विवाह में आएगा। और जब मैं वहां पहुंचा तो सभी लोगों से उन्होंने जो मुझे इंट्रोड्यूस किया वो यही कि इज माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, इज वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, हैज कम फ्रॉम कहां, भोपाल से चल करके आया है, और यू नो कि केवल ये मैरिज में शामिल होने के लिए आया है वहां से चल करके। और लोग भी बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ करके मुझे देख रहे थे, पूछते थे अच्छा आप भोपाल से केवल शादी में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं कहा या मैं शादी में शामिल होने के लिए आया हूं, पहली बात। दूसरी बात कि मेरे वहीं बेंगलोर में एक और बैचमेट रहते हैं जो रिटायर हो गए, मिस्टर मथायस। उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे एयरपोर्ट से उतरेंगे तो वहां एयरपोर्ट की एक बस चलती है, आकर के आप इस स्टॉप पर उतर जाइएगा, वहां मैं पहुंच जाऊंगा। तो जब मैं वहां पहुंचा तो वो भी मथायस भी थे और मथायस के साथ उनका बेटा भी था। फिर हम लोग चलिए उनके घर तक गए। तो बाद में मेरे फ्रेंड मथायस ने बताया कि मैं अपने बेटे को बहुत मना कर रहा था कि बेटा तुम मत जाओ, तुम क्या करोगे जाकर के, मैं जा रहा हूं, हम आ जाएंगे। आप बोले कि नहीं पापा मैं भी जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, बोले कि तुम क्या करोगे जाके। बोले देखिए दो बात है, एक तो अंकल आ रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए, चूंकि आपके दोस्त हैं तो ठीक है आप भी चलिए, और दूसरा ये कि कुछ सामान उनके पास होगा तो क्या आप उठा के लाएंगे या अंकल उठा करके लाएंगे। घर नजदीकी था तो हमें पैदल ही जाना था। तो बोले नहीं मैं जाऊंगा। और मथाई साहब के जो दो बेटे हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वो लोग जब कर्जन रोड अपार्टमेंट में रहते थे, दिल्ली की बात बता रहा हूं, तो हम उनके बगल में ही जो दूसरा अपार्टमेंट है एशिया हाउस में रहता था। हम दोनों के बच्चे एक ही उम्र के थे तो मेरे बेटे के साथ उनके दोनों बच्चे खूब खेलते भी थे, तो उस तरह से भी वो मित्रता है। अब मथायस का जो बड़ा बेटा है वो पायलट है, और दूसरा जो बेटा है जो आया था उसने अहमदाबाद से अहमदाबाद आईआईएम से किया हुआ है और वो बेंगलोर में ही सर्विस कर रहा है। तो चलिए ये दूसरी बात, इन घटनाओं को मैं अभी आपको जोड़ूंगा, देखिएगा। अब मैं तीसरी घटना पर आता, तीसरी घटना पर ही कि मुझे मैं मथायस के साथ ही रुका था, उन्हीं के फ्लैट पे रुका था, और मुझे अर्ली मॉर्निंग लगभग 5:30 बजे घर से उनके उठ करके तैयार होकर के और एयरपोर्ट के लिए निकलना था जब मैं लौट रहा था भोपाल। तो रात में जब हम सो रहे थे तो उनका जो बड़ा बेटा है जो पायलट है वो वहीं आया हुआ था। उसने कहा कि अंकल मैं सुबह उठ जाऊंगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं बेटे तुमको बिल्कुल उठने की जरूरत नहीं, तुम उठ करके क्या करोगे, हम तैयार होंगे और हम चले जाएंगे, मथाइस है ही, मथाइस की आदत है सुबह उठने की, तुमको बिल्कुल उठने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि नहीं नहीं अंकल ऐसे कैसे उठने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल उठूंगा और आपको सी ऑफ करूंगा। मैं कहा बेटे अभी तुम सी ऑफ कर दो, तुम पायलट हो, कभी कभी तो नींद पूरी करो अपनी। बोले कि हम लोगों को तो आदत ही अंकल, और वैसे भी आप कहें या ना कहें मैं उठूंगा। और मित्रों वो सच में वो उठा और मुझे सी ऑफ किया। ये तीन घटनाएं मैंने आपको बताई। क्या आप इन तीनों घटनाओं को जंगल में मोर नाचा किसने देखा से जोड़ सकते हैं, या कि यही कि अगर फूल सुगंधित हो तो उसकी जो सुगंध है वो फैलती ही फैलती है। मित्रों इसके केंद्र में क्या है, केंद्र में केवल एक बात है, और वो बात यह है कि अगर आप सच में किसी का सम्मान करते हैं तो उसे आपको व्यक्त करना पड़ेगा। जंगल में मोर नाचा से बात नहीं बनेगी, आपको उसे व्यक्त करना पड़ेगा अपने एक्शन से, अपनी भाषा से, जिस चीज से भी हो। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो आपको व्यक्त करना पड़ेगा। अगर आप किसी के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी सामने आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यानी कि जो कुछ भी हम किसी के प्रति महसूस करते हैं, सकारात्मक पक्ष की मैं बात कर रहा हूं, तो हमें चाहिए कि हम उसे अभिव्यक्त भी करें। और जब मैं लौट आया तो जो फ्रैंक नरोना जो सीनियर थे मेरे, उनका इतना खूबसूरत व्हाट्सएप मेरे पास आया कि मैंने अब उसको अपने पास रख लिया कि बहुत ही खूबसूरत शब्दों में उन्होंने जो आभार व्यक्त किया है, मुझे लगा कि यार ये दो तीन दिन ही लगे हैं और इतने खूब अपने पुराने फ्रेंड्स से मिले, अपने बैचमेट से मिले, इतने लोगों से मिले, नए शहर में गए, नए लोगों से परिचय हुआ, ये भी तो मेरे जीवन के अनुभव के खजाने की एक बहुत बड़ी संपत्ति है। तो दोस्तों यह है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, दैट्स ऑल। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब फिर मुलाकात होगी और फिर बातें करेंगे। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।